نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مهدي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الوالد الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد، الله سبحانه وتعالى قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتقوا، اللہ سبحانہ تعالی ایک عجیب انداز سے انسان کی حیثیت کو اجاگر فرما رہے ہیں کہ بندہ ہوتا ہے برائی میں مبتلا ہے، گندے کاموں میں مبتلا ہے، گناہ کر رہا ہے اور اس کو اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں، زندگی گزر رہی ہے، اس کی چلا جا رہا ہے، بس بے خبر ہے اپنی زندگی سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ شخص کدھر جا رہا ہے، دن رات وہ دوزخ کی آگ کی طرف بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی زندگی اب کتنی باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اس شخص کو موقع فراہم فرماتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ اس راستے کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ کے فضل سے اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اب اس کی زندگی کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے اللہ کی مدد سے۔ یہ ایک بہت ہی گناہ کی زندگی گزار چکا ہے وہ شخص، اب جب پلٹتا ہے نیکی کی طرف تو الحمدللہ کوشش کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے۔ ان الذین اتقوا، چلتے 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 الحمدللہ وہ اپنے اس کام میں نیکی کی طرف بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ وہ تقوی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے متقی جس کو کہا جاتا ہے وہ بن جاتا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ بس یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اونچے درجوں کے لیے قبول فرما لیا، اب کہاں اس کی پہلی حالت اور کہاں اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا فرما دیا، اور جب اس حالت میں آتا ہے تو کہاں تو اس کو چور ڈاکو سمجھا جاتا تھا، اب اس کی ہو رہی ہے عزت الحمدللہ، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے احترام کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے تقوی کی، اس کی ایمانداری کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں یار بڑا نیک آدمی ہے۔ کچھ لوگ جو پچھلی زندگی سے واقف ہیں وہ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اس کو احساس دلایا جائے اس چیز کا، اس کی نورانیت دیکھ کر، اس کی تبدیلی کو دیکھ کر، اور وہ اس حالت میں پہنچتا ہے تو ظاہر ہے اس عزت کو، اس چیزوں کو جب دیکھتا ہے دنیا کے اندر تو ذرا تھوڑا سا بس یہ سمجھے کہ نڈر سا ہو جاتا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے یہ قرآن کی، ذرا کچھ ہماری زندگی سے ملتی جلتی کہانی لگتی ہے تھوڑی سی۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم ایک ہی ہیں، جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا پاسٹ کیا تھا، اب ہم کس طرف اللہ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ तो गौर से इस बात को सुने आप, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो होता ये उसको निडर हो जाता है आदमी, अब वो फिक्र बेफिक्र हो जाता है, उसको अपने तकवे पे बड़ा घमंड हो जाता है, लोगों की इज्जत की वजह से अपने आप को समझने लगता है बड़ा नेक आदमी हूं, डर उसका निकल जाता है और मुकम्मल अपनी इबादात पे उसको फख्र होना शुरू हो जाता है। बस ये समझता है कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह बख्शा बख्शाए हूँ, ठीक हूँ। ज़ाहिर है उस पोजीशन पे जिसको ला तक्वा मुत्तकी कह रहा है तो ज़ाहिर इस मुकाम पे तो होते जाते हैं, इबादत के रंग चढ़े होते हैं, उसकी दुआएं कबूल हो रही होती हैं, लोग उससे दुआएं करा रहे होते हैं और जनाब उसको इमामत के लिए पेश कर रहे होते हैं, उसके लिए सब चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर कहता है अल्लाह ने मुझे सिला किया है, वो बेफिक्र हो जाता है। अगली फिक्र में अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि इस हालत में इंसान चला तो जाता है, खैर है। इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुन मिनश शैतान, सुबहानअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। वो इसी चक्कर में एक चीज भूल जाता है, इस मुकाम पर जो अल्लाह ने दे दी उसमें एक चीज भूल जाता है वो, बस वो कह रहे वो ना भूले आदमी, उसकी एहतियात करे। किसको भूल जाता है? नफ्स और शैतान को भूल जाता है। हालांकि ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंसान किसी मुकाम पर भी चला जाए जब तक मरता नहीं, ये दो दुश्मन उसके मरे नहीं है। दो दुश्मन जो है नफ्स और शैतान, वो नहीं मरे, जो मौजूद हैं याद रखें। अल्लाह ताला कहता है इस पे आदमी जो बेखबर हो गया और बिल्कुल निडर हो गया कि बस अब खैर है, वो ये भूल गया कि दुश्मन तो मौजूद हैं और दुश्मन को कमजोर कभी ना समझो। अल्लाह ताला कहता है ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है शैतान तुम्हारा, तुम इसको कमजोर कैसे समझते हो? इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुन मिनश शैतान, तो उसकी बेखबरी की वजह से पर बेपरवाही की वजह से कि उसने अपने अपने जो दुश्मन था शैतान जो नफ्स था उसको उसने कमजोर समझा और उसने पर तवज्जो ना की, तो उस बेतवज्जी की वजह से शैतान जो है वो जो उसके पीछे है वो इस चक्कर में रहता है कि मुझे एक छोटा सा भी सुराख मिल जाए तो मैं इसको पकड़ लूं। ये कुरान बता रहे हैं, हत्ता के वो ढूंढ लेता है शैतान उसका सुराख कि यहां से पकड़ा जाएगा। अब यहां एक बात सुन, दुनिया जो है वो फितनों से भरी हुई है दोस्त, और तो जमाना भी ऐसा ही है, किसी ना किसी फितने में वो शैतान चाहता है कि मैं उससे मुबतला करूं और पकड़ लूं, इसकी सब मामला खराब करूं। वो हुआ तो निडर, वो उस एहतियात से निकल चुका होता है कि वो शैतान नफ्स भी मेरे साथ है अपनी इबादत की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, तो बेएहतियाती शुरू हो जाती है उससे। अल्लाह ताला कहता है शैतान को तो रास्ता ढूंढता है कि इतना सा भी सुराख मुझे मिल जाता है उसको पकड़ो। फितने बहुत हैं जिससे शैतान पकड़ सकता है, लेकिन एक फितना ऐसा है, बड़े बड़े फितने हैं लेकिन बच जाते हैं मुत्तकी जो है, हत्ता के जो एक माल का फितना है उससे बच जाता है, वो भी उसके उसको असर नहीं करता क्योंकि तकवा अख्तियार किया होता है। माल के बहुत बड़ा फितना है उससे भी अपने आप को वो बचा लेता है, वो भी कुछ नहीं गुजार सकता। लेकिन एक फितना ऐसा है, ये याद रखें कि उससे बड़े बड़े इंसान नहीं बच सकते, बड़े बड़ों को लंबा कर देता है वो, उसमें ना कोई उम्र देखता है आदमी, ना कोई सेहत देखता है, ना कोई चीज ऐसी है। वो फितना था बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, अल्लाह ताला वान कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से उस पर कैच कर लेते हैं इंसान। और फितना क्या है? वो औरत का फितना है, औरत का फितना। इसमें जब इंसान बेएहतियाती शुरू करता है, ये अब ये देख रहे हैं आप, वो मुत्तकी हो गया तो अब वो एक मुझे शेर याद आते हैं गालिब का, पूरा शेर से याद आ जाए तीन बिना तो नाश कर दूं, दिन को पर्दे में ना हो, शब को उनके जी में क्या आई क्यों होगी। शायद आपको समझ में ना आए, फारसी भी है, अजीब बात कही है शायद, थी बिना तुम नाश कर दूं, दिन को पर्दे में नेहा। बिना तुम नाश जो है ये फारसी का लफ्ज है, ये सात सितारे हैं बड़े खूबसूरत आसमान के ऊपर, बड़े हसीन सितारे, बिना तुम नाश कहा जाता है। तो शायर ने अजीब तखिल पेश किया है कि ये सात खूबसूरत हसीन सितारे हैं, अजीब मामला है कि दिन के अंदर ही छुपे होते हैं, नजर ही नहीं आते, शब को उनके जी में एक आई कि ये रात को क्या होता है कि जब रात आती है, जब लोग सोए होते हैं, तो वो निकल के अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं। अजीब बात कही इसने, कहते जब दिन था लोग देखते उसको महसूस होते, उस वक्त वहां निकले ही नहीं ये सात सितारे, और शब जब लोग सोए पड़े तो ये अपने हुस्न को दिखाने के लिए आसमान पर चमक रहे हैं। तो यह मफहूम इसका क्या है कि जब इंसान जवान होता है तो हुस्न भी पर्दा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, औरतें धूप बढ़ती हैं भी, जवान आदमी बच्चों बच्चों से जवान है वो भी सामने नहीं आते, पास से निकल जाती है, शायर कह रहे हैं। लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो हर औरत सामने आ खड़ी हो जाती है, चलो क्या फर्क पड़ता है जी, बूढ़े आदमी है, क्या बात है। तो यहां बूढ़ा नहीं देखा जाता, दिल हर वक्त हर इंसान का जवान है औरत के मामले में। मैं आपको बताता हूँ, 80 साल के आदमी कहेंगे दूसरी शादी करनी है अपनी, बताना चुपके से कर लेते हैं, खिदमत ही करेगी मेरी और क्या होगा। तो ये जो फितना है औरत का दोस्त, शैतान के लिए सबसे बड़ा वार होता है, ना इसमें तकवा काम आता है, ना इसमें कुछ चीज काम नहीं आती, और बड़ी आसानी से उसको घेर लेता है। और ये इतना है हमारे, इस पर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हद कायम की है गैर महरम और महरम की, याद रखें। और जिसने इस हद को फलांगा, जिसको अल्लाह ताला ने औरत, जिस औरत को गैर महरम का ये हराम है, इसके इसको देखना हराम, इसके पास बैठना हराम है, इसके साथ बात करना जायज़ नहीं है, इस तरीके से पर्दे में बात हो, पर्दे से गुफ्तगु हो, इस तरीके से गुफ्तगु हो, तो वो जब इंसान हद फरहान लेते जी, ये तो मेरी मुँह बड़ी बहन है, ये तो मेरी मुँह चाची है, मैं तो ये तो मेरे बिल्कुल बाप की तरह लगता है जी, ये तो मेरे बिल्कुल दादा की तरह लगता है, भाईजान क्या हाल है, वो भाईजान कह रही है, वो भाईजान कह रहे हैं तू तो बहुत अच्छी लगती है, दिल उसका कुछ और कह रहा है। इन्ना खबीर बसीर, अल्लाह ताला उस इंसान की हर चीज़ को जानता है, और वो एक बड़ा बुजुर्ग आदमी मुत्तकी है, उसके दिल में शैतान ने औरत सामने आई, उसने हद को तोड़ा, तो वो वसवसा पैदा कर दिया उसके हुस्न का उसके दिल के अंदर, हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला दिल में उसके पैदा हुई बात वो तो देख रहा है, वो तो खत्म, बेशक उसके जहान नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो यहां इतनी बड़ी एहतियात की जरूरत है, जिस पर अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी गैर महरम के बीच में इंसान बैठता है, वो अकेले हो तो शैतान बीच में आ जाता है, वो कुछ गुफ्तगू करे, भाईजान नहीं है, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, चाचा जी, अंकल जी, कुछ नहीं चलता, कोई ये बड़े बड़े स्टोरी हैं, आप जमाना भरा पड़ा इन स्टोरियों से। तो क्या होता है कि जब शैतान को इतना सा सुराख मिलता है, सुभानअल्लाह, मोहब्बतें अपनी राह बना लेती हैं, आज इसने एक शेर कहा, मोहब्बतें अपनी राह बना लेती हैं और ख्वाहिशें इंसान को गिरा देती हैं, पता भी नहीं चलता इंसान को, दाव करते करते इतनी दूर निकल जाता है आदमी कि हद को फलांग जाता है। इसलिए शरीयत ने हद रखी है कि जो गैर महर्रम है, जी मेरा देवर है, ये तो मेरे भाई की तरह है, ये मेरा फला है, ये मेरे बहन का भाई खाविंद है, ये उसका खाविंद है, इसका कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर दिल के अंदर भी कोई वसवसा आ रहा है, किसी मर्द और औरत का बैठ कर आपस में गुफ्तगू के अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो रही है जो ज़ाहिरन नजर नहीं आ रही, लेकिन डेफिनेटली अल्लाह ताला कहता है कि शैतान अपना काम दिखाता है। जब ये है ही चीज पर्दे की कि उस औरत के सामने या उस और वो मर्द मर्द के सामने वो औरत नहीं आ सकती, वो उसके सामने उसकी हद अल्लाह ने कायम की है, और उस हद को इंसान तोड़ जाता है अपनी तरफ से कानून बना के कि मेरी बहन है, मिस बहुत छोटी है, और ये तो मेरी बेटी की जगह है, उसको सीने से लगा रहा है, अल्लाह जानता है कि उसके तासरात उस औरत की क्या है, उसकी क्या है। कई बेचारे जमाने के पीर आसमानों से नीचे गिर गए, और अब तक होता आ रहा है, ये अब तक होता आ रहा है, जब उन्होंने एहतियात को तोड़ा, उस हद को तोड़ा, तो शैतान क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें कि تقویٰ تو دیا, اس مقام پہ تو پہنچایا, لیکن کیا ہوا کہ بے احتیاطی سے زمانے کی گھروں کے اندر شریعت کو قائم نہ کرنے کی وجہ سے, حدود کو چھوڑ دینے کی وجہ سے, اول تو وہ گھر ہے ہی منحوس, اللہ کی کتاب میں تو وہ گھر منحوس ہے جس کے اندر شریعت کے اندر یہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا, حدود قائم نہیں ہے شریعت کی, حرام حلال غیر محرم اور محرم کی حدود قائم نہیں ہے, یہ میرے فلاں ہے, یہ میرے فلاں ہے, یہ تو چاچا ہے, تو اس کا بیٹا ہے, تو مجھ سے بہت چھوٹا ہے, یہ تو میرا دیور ہے, یہ میرا بھائی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس کے سامنے آ گئے, اس کے سامنے چلے گئے, بار برقعہ نقاب ڈال لیا اندر ہے تو کوئی پردہ نہیں ہے, اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس گھر کو, اور اس کا حساب تو دنیا میں تو نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ سارے گناہ موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہ تقویٰ تو ختم ہو گیا, اس کی محنت تو ختم ہو گئی, جو اس نے بدلی تھی زندگی تو ختم ہو گئی, تو گئی, ایک فتنے کی بات کی جا رہی ہے, تو کیا ہوا اس کا مقام تقویٰ ختم ہو گیا, جو چاہے کرتا رہے لیکن اللہ کی کتابوں میں وہ ایک نافرمان انسان لکھا گیا, اور حرام کاری کی دن رات جو وہاں کام ہو رہے ہیں, نہ ذکر کام آتا ہے نہ قرآن کام آتی ہے, کچھ نہیں, حرام ہو رہے ہیں آپ, یہ ایک بہت بڑی احتیاط کی چیز ہے, کن لوگوں کے لیے, جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی, یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اسے اللہ نے متقی کہا ہے کہ اتنی اونچی منزل میں تمہیں لے گیا ہوں, کیا تھے تم گندے کیڑے تھے, میں نے تمہیں کس مقام پہ پہنچا دیا, اس کے بعد اگر تم یہ کام کرتے ہو تو کیا تم بھول گیا ہو کہ شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے, تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دے گا, اپنی خود ہی تمہاری بات برباد کر لیا, اپنا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا, اللہ اکبر, آپ نے زندگی کی مثالیں ہیں, بڑے اچھے مقام پہ چلے, بڑی محنتیں کی, اور اللہ نے بڑا کام لیا ان سے, دین کا سلسلوں میں بڑا کام لیا الحمدللہ, بڑا مقام دیا ان کو, لیکن فتنہ عورت نے ان کو ذلیل کر دیا, سارے جیسے آسمان سے آدمی گرتے ہیں نا, اس کا وہ حساب ہوا, اتنے بڑے بڑے مقاموں سے, اتنی اتنی بڑی خدمتیں, اتنے بڑے بڑے کام, اتنے الحمدللہ وہ کام کا آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے یہ کیسے کام کر دیے, لیکن کس چیز نے اس کو ذلیل کیا, عورت کے ایک فتنے نے ختم کر دیا اس کو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا مسم طائفۃ من الشیطان, اور دوسری چیزیں بہت پتہ ہیں جس سے انسان بکھر جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, چلتے چلتے پلٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک برائی سے انسان نکلا ہوتا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے, شیطان اس کو کیا کرتا ہے, اس کے ذہن میں کچھ وسوسے پیدا کرتا ہے, وہ پرانی یادیں اس کو دلاتا ہے, وہ ریل چلاتا ہے اس کے دماغ میں, یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ برائی سے نکلا ہوتا ہے تو اب کیا کرتا ہے, کبھی کبھی وہ شیطان تو پیچھے ہے, یاد رکھنا, بالکل ساتھ ہے, تو وہ کیا ریل چلاتا ہے اس کے دماغ میں, وہ عورتیں یاد کراتا ہے, وہ جگہیں, وہ شراب خانے, وہ چیزیں, وہ سب کچھ, تو اس کو اس میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے پچھلی سٹوری کی طرف, وہ اس طریقے سے گرفت کرتا ہے اس آدمی کو, اور آہستہ آہستہ اس مقام سے اس کو لا کے پھر ایک ایسا وسوسہ ڈالتا ہے, تو کس چیز میں پھنس گیا ہے, میں نے خود دیکھے لوگ اس وسوسے سے اس راستے کو چھوڑ جاتے ہیں, کیا اس میں کیا ملا ہے یار, دیکھ کتنے مزہ, پھر وہ جب پھر وہ خیال آیا اس کو, فلاں عورت ایسی ملتی تھی, فلاں یہ تھا, یا کتنا کھلا زمانہ تھا, اب تو بس یہی کتنا فرق, ایسے ایسے وسوسوں سے اس کے پرانی زندگی کو سامنے پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ, بس دھوکہ دیتا ہے, اللہ کہتا ہے خبردار ایسے کام مت کرنا, تم بہت اونچی جا چکے ہو, ہر طریقے سے تمہیں شیطان ٹریپ کرے گا, اگر ٹریپ بھی ہو جاتے ہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے سبحان اللہ, بالفرض داؤ چل گیا شیطان کا تم پر, تم تو بہت اونچے مقام پر تھے, داؤ چل گیا تمہارا, اور تمہیں اس نے گرانے کی کوشش کی, اور تم پیچھے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے, چلنا شروع ہو گئے, تو لیکن تو زندہ ہوں مرے نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکر, سبحان اللہ, اللہ علاج بتاتا ہے کہ ایک کام یاد تم ضرور رکھنا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ نے بہت مقام دیا تھا, سب کچھ سکھائی تھی, اب تو وسوسوں کے ساتھ ان شیطانی چکر تو واپس پہنچ بھی گیا, اس طرف نکل رہا ہے, تو ایک چیز کو نہ بھولنا, وہ کیا کہ مجھے یاد ضرور رکھنا, سبحان اللہ, بے وقوف چل گناہ ہو گئے, تو اس سے تو نکل گیا پیچھے, سب تم نے اتار دیے, لباس اتار دیے, شکلیں چینج کر دیں, سارا کچھ کر دیا, لیکن ایک چیز تو یاد رکھ اپنے رب کے لیے, تذکر, ذکر کو نہ بھولنا, جو تجھے دل پہ اللہ نے ذکر دیا تھا, کم از کم بیٹھ کے کبھی تو اللہ کو یاد کر لیا کر, دو منٹ, گناہ گاری سمجھ گئے, لیکن کیونکہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو اب تو بہت گندا ہو گیا, اب تو واپس کیسے جا سکتا ہے, अब तुम्हें तुझे ले अपने पास, उससे दोबारा उसने तनाक गिरा दिया, दोबारा स्प्लेंडर पे लगा दिया, पर एक ही दफा कराने की बात है ना, तो वो इतना डिसहार्ट हो जाता है, इतना मायूस हो जाता है वो इंसान, इतना मायूस हो जाता है, कहता आप क्या, आप तो मैं बदमाश बन गया हूँ यार, आप क्या छोड़ छोड़े यार, क्या जिंदगी, वो क्या तस्वीर थी, वो क्या शक्ल थी, वो क्या सूरत थी। तो अल्लाह कहता ठीक है, तो इंसान है, तेरी फितरत ये चीज थी, लेकिन एक चीज याद, तज़क्कुर, मुझे ना भूलना, कभी कभी तू बैठ के दिल में मुझे इस तरह याद कर लेना कि तेरा कोई रब था तुझे इतना मुकाम दिया था। ये है अल्लाह का जिक्र है, बताए कैसे। कहते अगर तूने इतना भी काम कर लिया गुनाहों के पलटने के बावजूद भी दोस्त, काश मेरा पैगाम पहुंच रहा हो लोगों को, मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से, कभी अल्लाह ताला कहता है, और तू एहसास करता है कि तू गुनाहों की दोनों जिंदगी तुझे मिल गई है, कहां वो सुकून की जिंदगी, कहां वो उमरे, कहां वो हज, कहां रोजे रसूल, कहां गुंबद खजरा, कहां तवाफ, सुन बताओ क्या वो जिंदगी, कहां आबे जमजम और कहां शराब के जाम, कितना फर्क है। तो आखिर था है तो मुसलमान, जमीर तो जागा है ना, लेकिन अब क्योंकि उसे कर ली खता, अब वापिस जाना बड़ा मुश्किल है, और शैतान उसको जंजीरें डाल दी कि मैंने तो तुझे जहन्नुम में पहुंचाना है, तो अल्लाह याद कराता है कि ठीक है तू शैतान के चक्कर में, तज़क्कर बेवकूफ, अब भी तू मुझे याद कर, अब भी मुझे याद कर ले, क्या बात है, सुभान फज़ाहुम मुबसिरून, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कहता है, कहता सुन मैं तुझसे वादा करता हूं, इस जिक्र की बरकत से तू अगर गंदा भी हो गया, तू मुझे याद करता रहा, फिजा हम मुफ जरूर, मैं तेरी आंखों को फिर खोल दूंगा और रोशन कर दूंगा उसी तरह जैसे पहले, और तुझे इस जगह से बचा के दोबारा मैं वो मुकाम बता फरमा दूंगा। बहुत बड़ा हौसला है दोस्तों, ये अप्स एंड डाउन है जिंदगी के मेरे दोस्तों, कि हम नीचे थे, अल्लाह ने बहुत ऊपर कर दिया, ऊपर के बाद शैतान नफ्स मौजूद है, खुदा ना खास्ता पहले तो एहतियात इन तमाम फितनों की जो अल्लाह ने बताया, ताकि वो मुकामी ना आए, उस तक हम जाए ना, तो इन खास फितनों की तो खास इंसान जो बर्बाद करने वाले हैं, माल का फितना है, औरत का फितना है, ये सब जो फितने हैं, उनकी जो हदें अल्लाह ने कायम की, उन हदूद को आगे ना बढ़े, उस हद तक रहे, गैर महरम से बात करना उस हद तक जिस तरह अल्लाह ने इजाजत दी, उसके सामने आना उस हद तक जैसे अल्लाह ने इजाजत दी है, कोई रिश्ता नहीं है, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू माँ बोली बेटी है, मैंने देखा है बुढ़ा 75 साल का एक औरत आ रही है, उसे मिल रही है, देखे नहीं ये मेरी मुंह बोली बहन है, और मुझे देख रहे हैं उनकी आंखों में नशा है, 80 साल के आदमी क्या बताऊं, मैं खुद को धोखा दे रहा यार, और मुंह बोली बहन जो मटक मटक के बातें कर रही है, मुंह बोली बहन कहां, बहन कहां का रिश्ता, एक वसवसा शैतानी आया, मोहब्बतें राह बना लेती हैं, ये जो चीजें हैं ना, खुद रास्ता बना लेता है अपनी तरफ से, किस तरह वो किसी बात पे हंस रही है, वो दूसरा आदमी कोई और रिसीव कर रहा है मैसेज, उसने कोई बात दी तो उसने कोई मैसेज किया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, वो तो बढ़ती बढ़ती बात कहीं से कहीं पड़ जाती है, वो भी बहन का रिश्ता खत्म, पता तक किधर हवा उड़ा दिया, शैतान अल्लाह ताला कह रहे भड़कला लेगा तो ढूंढ रहे, हमारा क्या काम है, कि जो मुकाम अल्लाह पाक ने दिया है अपने पुराने मकाम को जरूर देखें, हम कि हम कितने गंदे थे, अल्लाह ने कितना फजल किया कि मुझे जहन्नुम की आग से बचा लिया, तो उसका शुक्र करते हैं, उनके हदूद अल्लाह जो है जो हम पे अल्लाह ने कायम किए हैं, उससे हाक ना जाए, अपने घरों को उसी मुतातबे रखें, कि जब मैं बेकार इंसान था, ये गलाजतें हमारे घर में वो गलाजतें अभी तक मौजूद हैं, बस ये आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, वही हंसी वही मजाक वही चक्कर सब कुछ वही मजे, औरतें बैठी हैं मर्द बैठी हैं, बस जी रिश्तेदार ने गप्पां चल रही है, और सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और शैतान बीच में बैठा है, किसी को कुछ मैसेज दे रहा है, किसी को कुछ मैसेज, और अल्लाह जाहिरी बातें पास तो बुजदिल होते हैं ना, इजहार तो नहीं कर सकते अपनी मोहब्बतों का, लेकिन दिल के अंदर तूफान आए हुआ तो उनके, तो अल्लाह तो दिलों को देखता है, तो अगर हम जाकिर शाकिर हो गए, अल्लाह ने कहा बिल्कुल हो गए, तो इन लजीना तक अल्लाह कहता है मैं तस्लीम करता हूँ तुम्हें, मुत्तकी बना दिया, अगला शैतान का तो हिफाजत करो, उसकी हिफाजत एक ही सूरत में, कि जो हदूद मैंने तुम्हें दी है, जो हद मैंने दी है हराम और हलाल की, उस पर हमेशा पाबंद रहो, वरना ये हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरी हद को तोड़ दे, चाहे कितना बड़ा मुत्तकी हो, कितना बड़ा तो आरिफ बिल्ला हो, कितना बड़ा तो गौसर कुतब हो, मेरी हद को जो तोड़ जाएगा वो तो फिर उसी सतह पर आ जाएगा जिस तरह पहले शैतान के साथ। तो ये तो हमें देखना पड़ता है, तो अगर इंसान को गिर जाता है, गुनाह कर बैठता है, जैसे मैंने बताया, बहुत से लोग बेचारे फितनों में दाएं, अल्लाह पैगाम दे रहे हूँ कि एक काम तो कर, तो जिक्र तो करना शुरू कर दे, जहां भी ये जिक्र करना शुरू कर दे। फजा हम अफसरन बता कहते हैं, मैं तुझे वापस ले आऊंगा, तुझे गुनाहों से बचा लूंगा और तुझे वो मुकाम भी अदा कर दूंगा जो पहले तेरा मुकाम। अब मुझे बताएं, ये जिक्र की एक बरकत, आप सोचें कि एक ऐसा इंसान अगर जिक्र को पकड़े तो अल्लाह ताला फिर भी उससे मोहब्बत करता है, और एक अगर मुत्तकी आदमी जिक्र करता रहे तो वो क्या हो जाएगा, मुझे बताएं अल्लाह के कितने के लिए हो जाएगा। अल्लाह जिक्र कैसी जबरदस्त चीज है, मुझे सोचें कि अगर गुनाहों से बच के, हराम रिस्क से बच के, उन तमाम बातों के साथ इंसान अल्लाह को याद करेगा तो इंसान होगा क्या, वो क्या नूरानी बन जाएगी, तो नूर का गोला बन जाता है वो औरत मर्द तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का वादा है कि जिक्र एक ऐसी चीज है कि तुम गलास तुम्हें चले भी गए हो, डूब भी गए हो, तो फिर अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को याद को। यहां एक वाक़ा मुझे याद आता है हज़रत उमर ज़माने का, ये वाक़ा लिखा गया है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का जमाना था। इसी तरह एक शख्स था, उसने तकवा इख्तियार किया, मुत्तकी हो गया, नेक काम किए, अच्छे काम किए उसने, और जनाब अल्लाह बड़ा नेक हो गया। नेक होने के बाद उसने अल्लाह की हद को तोड़ा, गैर महरम औरत से उसका मिलाप पता सलाम दो हो गई, वो बात बढ़ना शुरू हो गई, हद जो तोड़ी उनमें आशिका शुरू हो गया। अब दिल में दोनों के कंटर लग गए, एक्सचेंज कर दिया शैतान ने दोनों को, अब इतना मुकाम का आदमी, यहाँ तुम्हारे के जमाने का वाक़ा है। तो वो हद तक ये हो गया कि दोनों ने टाइमिंग कर ली कि चल तुम आओ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, यानी उस मुकाम तक पहुंच गए दोनों। मुत्तकी इंसान, तकवा वाला इंसान था, हद तोड़ी थी उसने। तो आओ कहते तुम मेरे घर आ जाना फला फला वक्त, उसने ठीक है। वो उस वक्त उसके घर पहुंचा, उसने नॉक किया, औरत बाहर निकली। सुभानअल्लाह, अल्लाह ने देखी किस तरह मिसाल दी है। तो साथ वाले घर में कोई कारी साहब थे माशाल्लाह, कुरान पढ़ रहे थे, तो कुरान के अल्लाह ने उनकी ज़ुबान से यही आयत निकाल दी, इन लजीन तकोजा मस्सम, और ये आयत जो पड़ी है तसक्कर, जो उसके सहन जब ये आयत पहुंची तो उसने एकदम जो अल्लाह का जिक्र शुरू किया तो वो बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, फौरन गिर पड़ा जमीन के ऊपर। वो और जो देखती रही क्या हुआ, और तो छोड़ के चली गई। अब वो दरवाजा पैसे बेहोश पड़ा है, इत्तफाक से उसका बाप उस गली से गुजर रहा था जहाँ बेहोश पड़ा था, तो उसने देखा ये तो मेरा बेटा, इसे क्या हुआ। वो उसके पास जाता है, उसने देखा तो होश ही नहीं उसको, उसने उठाया, रात में बुलाया, घर ले गया, घर ले जाकर उसने आँख खोली, थोड़ा होश आया, जैसी होश आया तो उसने एक आयत पढ़ी, यही तसक्कर फैज़ा मुबसर, उसने जान दे दी, मर गया बेचारा। कफन दफन हुआ, उसको दफना दिया गया, जनाजा हुआ। हजरत उमर को यह वाक़ा पहुंचा तो हजरत उमर ने क्या एक्शन लिया, आप देखें कमाल की बात है। उन्होंने कहा मुझे ले जाओ उसकी कब्र पर, अमीन मोइन ने बोला, चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उसकी कब्र पर पहुंचते हैं और कब्र में खड़े कहते हैं, वलिमन खाफा मक़ाम रब्बी जन्नतान इन अल्लाह तख़ल्फ़ुहुम मियाद, अल्लाह ताला तेरा तो वादा है कि जो तेरे खौफ से गुनाह को खत्म कर देता है, पलट आता है तेरे जिक्र से, तूने तो कहा है बोले मन खाफा मकाम रबी जन्नतान, अंदर से वादा थी कि अमीर मोमिनीन अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह ने मुझे दो ही जन्नतें दी हुई हैं। तो ये मामला है कि अगर कोई गलती हो जाए इंसान के, भाई भटक जाए, गलती हो गई, गुनाह कर बैठा, तो गुनाहों में गर्क ना हो, तू तो बड़े अच्छे मुकाम पर था, पलट जिक्र की तरफ और तस्वीर पकड़ के, इसी हालत में, जना की हालत में, शराब की हालत में, गंदी हालत में भी तू बैठ के अगर 5 मिनट अल्लाह को याद करेगा तो अल्लाह अपना खौफ तुझे पैदा कर देगा। बहुत बड़ी खूबसूरत आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें हर फितनों से महफूज फरमाए दोस्तों, और ये बहुत बड़े मुकाम है। ये जिक्र आप जो समझ रहे हैं छोटी चीज़ है, मुझे बताएं अगर ये मामूली चीज़ होती, छोटी चीज़ होती, तो पूरी मस्जिद भरी होती। ये तो सिलेक्शन ऑफ रब है, ये तो इंतखाब हो, ये तो अल्लाह का इंतखाब है, जिसको पसंद करता है उसको अपना जिक्र देता है, ये मामूली बात है। एक शेख कहने तो बहुत बीमार है, बहुत ही है वो है, पता नहीं कैसे चलता है, फलां भी करता है, जिस आदमी की तू बात करती है वो तो जिक्र में बैठा होता है। वो आदमी ना कहा अच्छा खाता जिक्र है, पाबंद है, वो तो बैठा होता है। सोचा मैं तो यकीन नहीं करता, मैं तू यकीन ना कर, अल्लाह ने वादा किया है कि जो जिक्र करता रहेगा उसको नीचे नहीं गिरने दूंगा। जिक्र ने खड़ा किया उसको तो चाहता है जिक्र करता है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम उसको बीमार कहते हो। अल्लाह तआला कहता है इसको मैं दुनिया के सामने बीमार नहीं हूं जिसने मेरे जिक्र को पकड़ा है, इसको जिक्र से मोहब्बत है। मुझे बीमार देखते हैं कितना हुआ, जब तक उसके दिल में अल्लाह की याद रहेगी अल्लाह तआला कहता है वो मेरा बंदा रहेगा, मैं उसको खींचते ही रहूंगा अपने जिक्र की तरफ। चले जाओ किस मस्जिद में तुमने जाना है, सबसे पहले पहुंच जाएगा वो आदमी इंशाल्लाह। वो ही नहीं पहुंचते जो मुनाफिक के नफाक रखने वाले हैं, लेकिन जिनको चुना अल्लाह पाक ने जिक्र के लिए, याद रखो अल्लाह के जिक्र को नहीं छोड़ सकते, इसकी लज्जत ही अजीब है। और ना ही वो बूढ़े होते, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बूढ़ा नहीं होता अल्लाह का जिक्र करने वाला, और ना ही बीमार होते, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह का जिक्र जो हो तो अल्लाह के करीब होता है इंसान। है ये मिसालें ये नहीं है, मुझे पता है डॉक्टर हैरान होते हैं भैया, अच्छा भाई तुम्हें ये भी मना है, तुम्हें ये भी मना है, तुम्हें ये भी मना है, घर रहना है, आराम करना है, सोना है। डॉक्टर जी आप सोने की बात करते हैं, तो वहां पहुंचे होते हैं फला जगह पे मस्जिद है जी, इनको हजरत बुलाते हैं जिक्र है, जिक्र में उसको आराम की जरूरत है। बोलते जी मुझे जिक्र की जरूरत है, वहीं तो आराम मिलता है। अल्लज़ीन तत्मन्ना कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, सबसे ज्यादा सुकून तो जिक्र के अंदर ही है, बिस्तर में जिक्र आता है, उसको कहाँ आराम उसको। तो अल्लाह ताला हमें जिक्र से मोहब्बत कायम रखे हमारी, तो ये हर चीज़ में काम आएगी। आज कोई गलती हो जाए, अल्लाह ना करे गलती हो, पीछे नहीं भागना, बल्कि क्या है कि उस गलती के अंदर भी इंसान तस्बीह को पकड़ ले, लेकिन जो एहतियात आज हमने बातें की हैं उन फितरों की तरफ बिल्कुल करीब ना जाए। घरों को आप शरीयत के मुताबिक रखें, माहौल कहीं सही बनाए, महरम गैरम हम की हिफाजत करें। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते, अकल नहीं तुम लोगों में। जब तुम्हारी औरतें बैठती हैं बातें करती हैं तो तुम्हें शर्म नहीं आती चीज़ की, हम अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी इज्जत दी है और हम हराम काम कर रहे हैं बैठ के। उसने कहा तुम्हें इस औरत के सामने आ तू बात कर, नहीं जी मेरी भाभी, वो भाभी लगती है लेकिन अल्लाह ने कहा तेरी भाभी नहीं है, तेरी माशूक बन जाएगी थोड़े दिन में। तो आए मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिन्होंने अपने साली के साथ शादी कर ली, बीवी रो रही है बेचारी, उसने अपनी साली को बुलाया कि मेरे घर आएगी रहेगी मेरी खिदमत करेगी, तो साली बीवी बन गई, बीवी बाहर निकल गई क्योंकि हदूद खत्म की थी खुद ने। ये तो आम जमाने की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। तो तुम हम लोगों को शर्म नहीं आती अगर हमारे घर ऐसे हैं कि जहां हद ही कायम ना हो शरीयत के मामलों, जहां पर्दे ही ना हो, जहां नकाब ही ना हो चेहरों पर, जहां हया ही ना हो औरतों के अंदर, तो वहां क्या अल्लाह की रहमतें आएंगी इंसान पर। फिर उनका जो मुकाम अल्लाह कहता है जिनको मैं मुत्तकी कह दूं, इतना मुकाम दे दूं, जिनको लोग उनकी इज्जत करने लगे, उनके एहतराम शुरू हो जाए, उनके नामों को जी तो बड़े नेक आदमी, ये तो बड़े जाकिर आदमी हैं, ये तो बड़े माशाल्लाह, देखो जी शराब देखो, इनके इमामे देखो, इन शिकड़े देखो, और हम अंदर ये काम करते हो तो वो ठीक है, उनको तो हम धोखा दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला मैं तो देख रहा हूं, फिर मेरी सजा तुझे पता है क्या होगी, मैं तुझे यहां जलील नहीं करूंगा, तुझे उस जगह जलील करूंगा जहां तुझे इज्जत की जरूरत होगी, तमाम दुनिया के सामने तुझे नंगा करूंगा, मुझे कौन बचाएगा तुझे, बचाओ। कभी ऐसा ना हो जाए जी तुझे बड़ा बुढ़ा आदमी है, औरतें कहती हैं इनसे क्या पर्दा करना, ये तो फला वो बुढ़ा शुढ़ा कोई नहीं है, उसका ईमान तुम खराब कर दो, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी तुम्हारे हंसने से, तुम्हारी मुस्कुराहटों से। क्यों? कि दो अपोजिट चीजें हैं, मर्द और औरत को उन्होंने बनाया। जैसे ये लाइट जल रही है ना, इतनी साइंस का नहीं पता, ये लाइट रोशनी है क्या, ये दो करंट है पॉजिटिव और नेगेटिव, जब इनको मिलाते हैं तो उसमें एक लाइट पैदा हो जाती है। औरत और मर्द गैर महरम ये दो करंट है, जहां एक दूसरे के देखा है एक शोला निकलेगा, जबरदस्त करंट निकलेगा, बात समझ आ गई, वो जो करंट होगा वो तबाह कर देगा इंसान। तो किसी भी उम्र की औरत हो, किसी उम्र का बंदा हो, औरत को पर्दा ही करना है और मर्द को भी पर्दा करना है उससे। कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत मुत्तकी आदमी से क्या पर्दा करना, ये तो नेक आदमी इससे क्या पर्दा करना, ये तो हमारे बाप के बराबर क्या पर्दा करना, तो अल्लाह कह देता है ये बाप के बराबर चला जाए, उसको पता है कोई बाप नहीं होता, बाप रहेगा दिल तो उसका, उस दिल तो उसका खत्म हो गया बेचारे की, उसका तकवा ही खत्म हो गया, उसमें रुकावट नहीं आ गई। तो अल्लाह पाक हमें पूरी तौफीक दे कि जो मंजिल मुकामात दिए हैं हमें जिक्र के जरिए से मिले हैं, उस स्टेटस को कायम रखें अल्लाह की किताब में, उसको डाउन ना करें। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।